ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ चतुर्थ स्कंद 28वां अध्याय श्लोक संख्या 11। भय नामनो ग्रजो भ्राता रज्ज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातुः प्रियचिकित्सया। भय नामनो ग्रजो भ्राता रज्ज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातुः प्रियचिकित्सया। भयो नाम्नो अग्रजो भ्राता रज्ज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातुः प्रियचिकित्सया। शब्दार्थ भय नाम्नः, भय नामक, अग्रजः बड़ा, भ्रातः भाई, प्रज्वारः प्रज्वारने, प्रत्युपस्थितः वहां उपस्थित होकर, ददाह आग लगा दी, ताम उस पुरीम पुरी में, कृत्स्नाम पूरी तरह से, भ्रातृहु आपने भाई का, प्रिय चिकित्सया प्रसन्न करने के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। ऐसी दशा में जवनराज के बड़े भाई प्रज्वर ने आपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए उस नगरी में आग लगा दी। तात्पर्य, वैदिक प्रथा के अनुसार सबका ही अग्निदाह किया जाता है, किंतु मृत्यु के पूर्व भी एक दूसरी अग्नि या ज्वर होता है जिसे प्रज्वर या विष्णु ज्वर कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि यदि मनुष्य का ताप 107 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। यह प्रज्वर जीव को जीवन की अंतिम अवस्था में दहकती अग्नि में छोड़ देता है। ओं अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम् श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि दिनामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप जितने भक्त वृंद मातृवृंद उपस्थित है सभी को विशेष स्वागत है। तो ये भागवत के जो प्रसंग आप लोगों ने कई दिन से आस्वादन कर रहे हैं, पुरंजन उपाख्यान, जिसमें राजा प्रचिन बरही को भक्त श्रमणि नारद ने ये उपाख्यान के द्वारा उनको उनके कर्मकांडीय पद्धति से जो उनके आसक्ति था उसको उबारना चाहते हैं। तो ये अंतिम अध्याय है पुरंजन उपाख्यान का, चार अध्याय वर्णन किए हैं। इस अध्याय में पुरंजन पुरी का नाश हो गया है, आग लग गया, अभी ये श्लोक में बताया गया, आग लगा दी उन्होंने, अंततः आग लगा ही डाला। तो आग लगाने से पहले क्या किया, कितने पुरी की प्राप्त किए, क्या वो अब विशद रूप से सब पढ़ चुके हैं। अब इस अध्याय में आग लगाने वाला बोलते हैं भय नामक जो जवन राज था उसके बड़ा भाई ने आग लगाया। क्यों लगाया? ना भाई के काम करने, भाई के प्रति उनका बड़ा स्नेह था। अरे भाई तू काम कर, मैं कर देता हूं तेरा काम। अपने भाई का काम साधन करने के लिए, भ्रातृप्रिय चिकित्सया, भाई को प्रसन्न करने के लिए छोटे भाई को और छोटे भाई का इच्छा के अनुसार काम किया है। कभी कभी बड़े भाई संसार में इसे ही करते हैं, अपने अगर समर्थ है बड़े भाई और छोटे भाई कुछ आवश्यकता करता है, कुछ चाह करता है, तो उनको जान करके उनके मन के हिसाब से काम करते हैं, उन प्रसन्न हो जाता है कि भैया मैंने बहुत मदद किया, तो उनको मदद किया, भय को मदद किया आग लगा करके। तो किस में आग लगाया? उस पुरी में आग लगा दिया। किस पुरी? वो पहले वर्णन सुन चुके हैं, वही पुरंजन रूपी पुरी, जिस पुरी के एक बूढ़ा सांप ने उसका सिक्योरिटी कर रहा था, वो भी रिटायरमेंट होना चाहिए था लेकिन किया नहीं, बूढ़ा हो चुका वो भी। अब इस अध्याय में विशेष करके इस श्लोक में ये संसार के एक नग्न सत्य का वर्णन होता है जिसमें हम सभी को ही भोगना पड़ेगा, कोई एक प्राणी उससे बच नहीं सकता। वो नग्न सत्य है जराग्रस्त बुढ़ापा अवस्था। ये जो कालकन्या है वो है जरा बुढ़ापा। भगवान ने गीता में जो चार समस्या के बात कहे हैं, हम बोलते हैं कोई समस्या नहीं, हम ठीक ठाक है, हम एक दूसरे से मिलते ही तुरंत कैसे हैं सर, हाँ ठीक हूं, तुरंत दान दिखाकर बोल देते हैं, लेकिन सरासर झूठ है, कोई नहीं बोल सकता मैं ठीक हूं। क्योंकि ये जो चार समस्या है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इससे तो हमेशा सबका पाला पड़ता है। जन्म हो गया भूल गए, मृत्यु अभी हुआ ही नहीं, लेकिन बीच में जो दो बैठे हैं जरा और व्याधि, ये तो बचपन से लेकर मृत्यु तक सताता है। कोई ऐसे नहीं कह सकता नहीं बूढ़ा होने से बीमारी होगा, नहीं, बीमारी तो 2 महीना के बच्चा से ही हो रहा था शुरू, वो तो बीच बीच में चस्का देता रहता है ना नहीं। लेकिन फिर भी हम अबोध जीव इस संसार को और संसारिक सुख को भोगने के लिए जो तथाकथित शरीर है हमारा पास, यही तो साधन है सुख भोगने का, और क्या है? चाहे सुख भोगो दुख भोगो, एक ही तो हमारे पास गाड़ी है, इसी गाड़ी में चढ़ करके जो भी सैर करते हैं, चाहे सुख दुख सब भोगते हैं, और इंद्रिय उसका साधन है, उसमें सुख भोग सकते हैं। बोलते हैं जिससे सुखी होना चाहते हैं, जिस गर्व करते हैं, मैं इस शरीर से सुखी भोगना चाहता हूं, इस शरीर को थोड़ा देखो कैसा है, एक तो मॉडल कितना पुराना हो चुका है, दूसरा वो है कैसा, शास्त्र में कहते हैं शरीर को शरीरम व्याधि मंदिरम, क्या बोलते हैं? शरीर व्याधि का मंदिर है, मंदिर सब मंदिर वाले हैं सब जानते हैं, मंदिर किसको कहते हैं? जिसमें देवता विराजमान करते हैं, हम लोग जाते हैं उसको घर कहते हैं, भगवान भगवत विग्रह रहने से वो मंदिर हो जाएगा, मतलब रहने वालों के नाम से ही घर जाना जाता है। अगर हम लोग रहेंगे तो घर होता है, भगवान रहेंगे तो मंदिर होगा, तो ये भी मंदिर है, ये शरीर को मंदिर कहा गया, उसमें कौन सा रहते हैं। मालिक कौन है? श्री व्याधि। व्याधि को समझते हैं ना, सबका उसमें कोई अपरिचित नहीं है। तो इस शरीर से नाक से लेकर के सिख पर्यंत हर इंच इंच में उनका अधिकार है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी कहीं पुर्जे में हाथ लगा दो डॉक्टर साहब बैठे हैं, इसी के लिए तो काम भी चलता है हम लोग। अगर वो व्याधि मंदिर ना होता फिर वो क्या करते मेडिकल साइंस इज ओनली फॉर दैट, है ना नहीं? तो व्याधि का मंदिर है और इसको छोड़कर नहीं जाता है शरीर से, वो हमेशा रहता है। लेकिन व्याधि तो है ही है, लेकिन उसको हम नाना प्रकार के औषधि और चिकित्सक आदि के सहायता से उनको खातिर नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, हम चला लेंगे, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं, तो उसको खातिर नहीं करते हैं। लेकिन अंततः वो जो जवनराज और उनके जो सैनिक सब थे, जवनराज है आधी और व्याधि, और उनके साथ गंधर्व सेना में दिन प्रतिदिन हमारे एज उसके साथ आ गए। जब अटैक के बाद बूढ़े हो जाते हैं ना, तब आपके जो शरीर के आपके संबंधी है और जो नौकर वाकर चाकरे, मतलब ये शरीर और ये शरीर के इंद्रियां सब जो आपके हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट थे, जो चाह मुझे ये खाने के लिए चाहिए इसे प्रस्तुत करते थे, जो विषय सुख चाहिए सो लाकर आपको सुख देने देते थे, वो भी सब हाथ उठा दिए। अब बुढ़ापे आने से पहले एक व्यक्ति ने मुझे बोला था कि एक व्यक्ति ने, इतने चतुर था, मनुष्य बड़े चतुर होते हैं, उन्होंने बोला कि काल कन्या से मस्त दोस्ती कर लेते हैं, ये काल ही बड़ा खतरनाक सबको ग्रास कर जाता है। तो बोला उनसे मित्रता किया और बोला चलो कोई तुम्हारी मित्रता कर रहे हैं, क्या चाहिए तुझे? ना मुझे आप ग्रास ना करना, ये तो हो नहीं सकता, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ माई मास्टर, मेरा मेरे मालिक का मैं तो पक्का सेवक हूं, वो तो मुझे ऑर्डर देगा मैं तो सबको लूंगा, आपको भी लूंगा, छोड़ेगा नहीं। तो क्या मित्रता है भाई, मित्रता मित्रता का जगह है, काम अपने जगह में है, आप क्यों मुझे इसे कर? ना ठीक है, आप अगर सच्चा आपके सेवक हो तो मैं भी आपका सच्चा मित्र बनूंगा, ना क्या मित्रता निभाने, ना इतना तो काम कर दो, कम से कम मेरे पास आने से पहले एक फोन कर देना, मुझे एक पत्र लिख देना, फोन तभी था नहीं। बोला एक चिट्ठी भेज देना। बोले एक क्यों, चार चार चिट्ठी भेज दूंगा, उसमें क्या बात है, चिट्ठी भेजने में हर्ज क्या है, बताऊंगा ही आने से पहले, ना थोड़ा समय के पहले भेज देना ताकि मैं तैयारी कर लूं। बोला हाँ, एग्रीमेंट साइन हो गया कि चिट्ठी भेजूंगा। बोला चार चिट्ठी भेज दूंगा मैंने। तो मनुष्य बड़े चतुर सोच लिया, बोला कोई बात नहीं, चिट्ठी आएगा, वो क्या समझ रखा है, मैं यही से काम कर लूंगा, वो देखते रह जाएगा, मैं अपना सारे काम निपटा लूंगा, सारे काम निपटा लूंगा, जाने की तैयारी कर लूंगा, क्या जाएंगे जाएंगे देखा जाएगा, और क्या बाकी है। तो अशेष कामना हृदय माज, हृदय में अशेष अशेष प्रकार के प्लानिंग योजना लेकर जो बैठा है, आशा करता है कि जाने से पहले तो लेटर आएगा, मैं तैयारी कर लूंगा। तो एक दिन हठात आकर के पहुंच गया अपनी सेना के साथ काल कन्या ने। तो बोला अरे तुम कैसा मित्र है यार, अभी आ गए लेने के लिए, पहले खबर तो देना था, मैं बताया था तूने चिट्ठी देगा। बोला तू मेरे सामने झूठ बोलता ना, क्या झूठ, ना मैं लेटर भेजा था, लेटर भेजा था बिल्कुल नहीं, लेटर भेजा, क्या प्रूफ है तू लेटर भेजा था, कोई प्रमाण है आपके साइन करके, कोई होता ना जो रजिस्टर्ड लेटर का कोई रसीद है आपके पास? ना बाकायदा रसीद आपके पास मौजूद है ना, क्या? बोले सबसे पहले लेटर मैंने दिया आपके सर के ऊपर रखा, बाल का रंग सफेद कर दिया। बोले लेकिन तू उसको लेटर को देख कर भी अनदेखी कर दिया, कलर लगा लिया, अब मैं क्या करूं, लेटर ने भेजा था। बोले सर कोई काम नहीं किया, उसको काला करके काम चला लिया। बोले छोड़ो लेटर को क्या देखेंगे, कोई कसर नहीं किया, असर नहीं किया। तो बोला चलो भैया ने लेटर को नहीं पढ़ा, और एक लेटर भेजा, और एक लेटर भेजा, उसके नीचे आंख के ऊपर नंबर चढ़ गया, चश्मा लगा लिया मोटा मोटा, काम चला लिया। बोला उसको भी तू खातिर नहीं किया, तीसरा लेटर भेजा मैंने, उसके नीचे 32 निकाल दिया, उसके बाद एक एक करके निकाल दे रहा, फिर भी ध्यान नहीं दिया, अब नारियल मूंगफली खाना नहीं पड़ता, पीस पास करके खा लेता है, तब भी नहीं खातिर किया। तीन लेटर के बाद चौथा लेटर दिया, पूरा बेंड कर दिया तुझे, लेकिन फिर भी लाठी लेकर के कमर बांध कर फिर चल पड़ा। अब क्या करूं, ये तेरे शरीर मौजूद है मेरे लेटर, अभी भी तू मुझे मना करता है, लेटर नहीं दिया। ये सब नोटिस आने के बाद भी चार चार नोटिस आने के बाद भी आप उसका कोई कदर नहीं किया, कुछ व्यवस्था नहीं किया, तो मुझे क्यों दोष देता? मैं तो अब तक लेकर जाऊंगा, तो गड़बड़ा जाते हैं। तो इस प्रकार से पुरंजन नगरी में जो पुरंजन आपने बुद्धि पुरंजनी के साथ जो आपने पुत्र पौत्र, पौत्र मतलब जो उनके गांभीर्य आदि और सहनशीलता आदि धैर्य आदि ये सब जो उनके परिवार के साथ बड़े सुखपूर्वक भोग कर रहा था, तो उस धीरे 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 पहले तो सेना आते हैं, सेना अकेले कुछ काम नहीं करते, आधी व्याधि आते हैं, इसे नोटिस आता है, उसके बाद में काल कन्या आती है, काल कन्या के साथ जवन राज का फ्रेंडशिप होता है, दोनों मिलकर का अटैक करते हैं। तो बोलते हैं चलो, क्योंकि काल कन्या को कोई शादी नहीं करते थे, वो बोला मैं आपके लिए ठीक करता हूं, चलो आपको तो कोई पसंद नहीं करते हैं, आपको क्या पसंद, आप जबरदस्ती उनको ले लेंगे। तो काल कन्या को और जवन सेना ने साथ में लेकर के इस धरती पर जो विचरण करते हैं, कोई मना नहीं कर सकते हैं, और जबरन पकड़ लेगी, काल ग्रस्त कर लेगा। उसी को इस अध्याय में, इस श्लोक में कहते हैं कि काल कन्या ने आकर के इस पुरी पर अटैक किया और उस पुरी में जितने प्राणी थे सबको आलिंगन कर डाला। काल कन्या मतलब जरा बुढ़ापा, बुढ़ापा जब सबको आलिंगन किया, आलिंगन करते ही खुशखबरी नहीं है, सबका श्री हीन हो गए, सबका सौंदर्य चौपट, सब फोटो उठाने के लायक नहीं रह गए ना, फोटो उठाने के लायक नहीं रहे, तो श्रीहीन कर दिया सभी का, पूरे पुरी के सबको तहस नहस कर डाला। और उसी के सुजोग लेकर के और उन्होंने अटैक कर दिए, जवन सेनाओं ने गंधर्वों ने अटैक कर दिए, मतलब आधी व्याधि दिन प्रतिदिन जो रोग बढ़ते गया, अटैक करके बिल्कुल रुग्ण कर दिया अवस्था। और अपने पुत्र सेवक आदि के द्वारा जो अब तक उन्होंने कितने कितने उपाय करके अपने को भोग कर रहा था, अभी वो भी सब निर्बल हो गए, कोई साथ नहीं देते हैं। अब नाना प्रकार के उपाय भी करने लगा, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए होगा, सब प्रकार 36 प्रकार के सलाइन फलाइन सब लिया होगा, लेकिन काहे को कुछ हो, कुछ नहीं हो सकता, अंततः तो उपाय विहीन हो जाना पड़ता है, उपाय विहीन हो जाना पड़ता है। इस अवस्था में जब बिल्कुल उपायहीन हो गया, कोई सहायक नहीं है, कोई सहायता नहीं, इसी अवस्था से आपने भय जवन सेना जवन राज भय की अच्छा काम करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके बड़े भाई ज्वर वो आके आग लगा देते हैं, उसको प्रज्वर या विष्णु ज्वर कहते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, शरीर में आग तो लगता है मर जाने के बाद, दाह संस्कार करते हैं, बोलते हैं दाह संस्कार होने से पहले, मरने से पहले भी एक आग लगता है, वे ज्वर रूपी आग, वो दिखाई नहीं पड़ता, छिपे छिपे अंदर से लगता है। बोलते मेडिकल साइंस में उसको अप्रूव किया है, तो मरने से पहले एक विशेष ज्वर आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है 107, 107 डिग्री से अधिक चला जाता है, तब तो फिर कोई जीने का सवाल। बोले ये आग, वो आग दहकती हुई आग लगा देता है वो, आ करके काल कन्या ने पूरे शरीर में इतने तेजी से आग लगा देता है, वो जल जाता, फिर खत्म हो जाता है आदमी। तो मरने से पहले ये अंदर से आग लग करके शरीर को मार देता है, फिर उसे डेड बॉडी को जलाते हैं। तो ये जो आग दिखाई नहीं पड़ता है, अंदर से लगा देता है वो, काल कन्या और जरा और उनके भाई प्रज्वर ना उनके, ये सब मिलकर के करते हैं। ये जो सारी वर्णन है नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को कहते हैं, ये सारे अभी तुम्हारे होने वाले, वो हम सभी उसी के शिकार में है, सभी उसके चंगुल में है। भक्तिनो ठाकुर कहते हैं, वार्धक्य एकन उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन, अभी बुढ़ापा आ गया, कईयों को आ भी चुका है, कईयों को आ ही रहा है, अब उपाय विहीन, अब कोई उपाय नहीं, बुढ़ापा के ऐसी अवस्था है जिसमें जिनके लिए आपने खूब परिश्रम किया, खूब उनको प्रेम किया, उनको पालन पोषण किया, उनको मदद किया, वही लोग, बड़े अद्भुत व्यवस्था है संसार में, मरने के बाद भी ये कहते ना जो मुखाग्नि दिया जाता है, मुखाग्नि मुख में आग देंगे, वो कौन देगा मालूम है ना, जो आपका सबसे नियर एंड डियर होगा, आपके बड़े पुत्र हो, तो जो पुत्र है तो मैंने सबसे जो आपके स्नेह के भाजन है उसी को बुलाएंगे, बोलेंगे उनके मुख में आग दो। बताओ, जिसको पिता करके मानता था, जिसको चाचा करके मानता था, उसके मुंह में आग, आग मुंह में देने के लायक होता है? लेकिन यही प्रथा रखा। क्यों प्रथा रखा है? क्योंकि इतने आसक्त है जीवात्मा अपने शरीर और शरीर के संबंधी प्रति, नहीं छोड़ेगा, जाएगा नहीं, शरीर रिजेक्ट हो गया, मरने के बाद भी जाना नहीं चाहेगा। शरीर में ज्वर बढ़ गया, शरीर छूट गया, शरीर से निकल करके जीवात्मा बाहर घूमेगा, वो भी जाना नहीं चाहेगा। तो ये भूत प्रेत के प्रभाव से बचने के लिए ये वैदिक प्रथा लगाया गया कि जिसके प्रति ज्यादा आसक्त है, जो बेटा है बेटी है, जिस उनको बोलेंगे कि उसको लेके जाओ, उस मुंह में आग घुसाओ, तो बोलेगा व्हाट, इनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कोई कसर नहीं छोड़ा पाप करने का, उनके लिए ही किया, सारे संपत्ति इकट्ठे कर, वो अंत में इत सब मिलकर रो रहे हैं, मैं बोलता अरे मैं हूं ही इधर, क्यों रो रहे हैं, लेकिन देखते तो कोई नहीं उसको, वो तो अशरीरी है, लेकिन अंततः ला करके बोले मैं मुंह में आग घुसाता है, टू मच, मैं नहीं रहूंगा, छोड़ के चला जाता है, बोले ऐसा है, मेरे मुंह में आग घुसाता है, चला जाता है छोड़कर। जाने के बाद बोलते हैं अरे बेटा तो है मेरा, क्या है, थोड़ा गलती कर ही डाला, चलो फिर देखते हैं क्या है, उसको बुद्धि सुधरा नहीं, अब बताते हैं थोड़ा और क्या करें। बूढ़ा फिर वापस आता, वो आता फिर भी आ जाता वापस, तो फिर वापस आता, बोले जिनका जितना आसक्ति है उनको इतना दिन तक वो क्रिया करना, ब्राह्मण लोग के लिए 10-12 दिन का है, जिस जैसे अलग अलग मुस्लिम लोग को तो महीना दिन करना पड़ता है, क्योंकि वो कवर खोल करके आ जाना चाहे इतने दिन तक करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे जो प्रेत कर्म है, प्रेत कर्म का यही अर्थ है कि प्रेत को बिल्कुल जला हुआ, कच्चा हुआ, बिना पका हुआ ऐसे ऐसे चीज देते रहेंगे, वो बहुत अफंडेड फील करेगा, भाग जाएगा, लेकिन फिर आ सकते रहेंगे, तो इसे बार 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 इसको भगाएंगे तब जाकर जाएगा छोड़, नहीं तो नहीं छोड़ के जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा, इसलिए प्रक्रिया रखा गया। तो इस प्रकार इसमें अंततः शरीर जब पूरा हर एक पुर्जा पुर्जा कोई काम के लायक नहीं रहा, सारे इंद्रिया कोई काम नहीं करते हैं, शरीर काम नहीं करते, रुग्ण बैंड बिल्कुल हो चुका है, फिर भी भोगने का इच्छा नहीं छूटता, नहीं जाता। दिवस जामिनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आसापायु। बोलते ये दिन बीतता है, रात बीतता है, कितने शिशिर बीत गया, कितने बसंत, कितने कार्तिक बीता चुके वृंदावन में भी, सब इस प्रकार काल खेलते खेलते क्रीडती और आयु को हरण करते चला जा रहा है, बिल्कुल अंतिम स्टेज पर आकर पहुंच चुके हैं, दंड धारण करके मतलब बूढ़े होकर बैंड होकर चलते हैं, आंख में दिखाई नहीं पड़ता, मुख में खा नहीं सकते, किसी प्रकार के शारीरिक सामर्थ्यता सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आशा पिंड जैसे को तैसे बना रहता है, वो नहीं छूटता। तो इस आशा के पास से बचने के लिए ये चार अध्याय बताया गया, विशेष करके अध्याय कि इस अवस्था तो ऐसा एक अवस्था है जिनके लिए आप पूरी जिंदगी भर काम करते, पूरी जवानी दे दी, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक देते हैं, रखते हैं 60 ना, 60 के बाद तो फिर रिजेक्ट कर देंगे, बोले जाओ नालायक है आपने, थोड़े भत्ता होते लगे जाओ तो घर में जाओ, वो तो गवर्नमेंट ऑफिस वाले भी छूट कर देंगे, हरेक प्राइवेट वाले भी छुटा देंगे, लेकिन घर वाले भी नहीं है जो भी छोड़ देते हैं, वो भी कई आप सुने भी होंगे देखे होंगे, वो भी एक ओल्ड एज होम आजकल बन गया, वहां जाओ, क्योंकि हम अब बूढ़ा घर में रहता है, हमको सुख भोगने में दिक्कत करता है, हमेशा खांसी करता है, ये चिल्लाता रहता है, गाली करता है, वो करता है, वृद्धावस्था में यही हाथ होता है, वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता, चिंता इतने ग्रास करता है, उसको बोलते हैं व्याधि, आधि मतलब मानसिक व्याधि और व्याधि मतलब शारीरिक रोग, तो दोनों इतने ग्रास करता है, हमेशा रात भर नहीं सो सकता, दिन में सोएगा, वृद्धावस्था ऐसा है, रात भर किसी को सोने नहीं देगा, इधर उधर करते रहेगा, खांसी करता रहेगा, तो जो जवानी बेटा बेटी उनके होंगे बोले ये क्या डिस्टर्ब करता रहता है हमको, तो बेटर है कि उनको कहीं अलग जगह में रख दिया जाए, अपने शांति में रहे, शांति में रहेगा जिंदगी भर आपके लिए रहा तो इस समय तो पूरा आपके अटैचमेंट में रहेगा, लेकिन फिर भी उनको उठा कर ओल्ड एज में घर में रख देते हैं, उनको इस प्रकार दशा करते हैं। लेकिन ओल्ड एज घर में आपने जो जिसके लिए आपने इतने सब किया वही लेकर रख देते हैं, फिर भी नहीं छूटता, बोलते ना वो मुझे पूछेगा, फोन करेगा, देखना आएगा ना, पता करेगा, ऐसे करते करते हार्ट अटैक मर जाते हैं, क्यों मेरा पुत्र, क्यों मेरा पुत्री आकर मुझे देखा नहीं, मरते दम तक नहीं छोड़ता आ सकती। तो इसलिए भागवत में शिक्षा दिया जाता है, कम से कम अभी तो वृद्धावस्था में तो समझ जाओ, अब तक नहीं समझा क्योंकि भरी जवानी था, भोग के प्रबल इच्छा था, अब सामग्री भी समर्थ भी था, पूरे शरीर में इंद्रिया बलवान था, भोग करने के लिए खूब भोग लिया, अरे अभी तो सारे दुर्बल निर्बल हो चुका है, कोई सामग्री नहीं मिलता, चिल्लाते उठते कुछ नहीं हो पाता, खाने के वस्तु मुख में डालो तो हजम नहीं होता, सारे गड़बड़ हो चुका है, अभी भी सतर्क हो जाओ, फाइनल नोटिस में नहीं, फिर भी नहीं करेंगे। तो इसी के लिए इस अवस्था में, इसी रुग्ण दुर्बल अवस्था में, उस काल कन्या और जवन सेना के जब आक्रमण बिल्कुल कुचल चुके हैं इस पुरंजन राज्य को पुरी को, तो अंततः उनके बड़े भाई प्रज्वर ने आके पहुंचते हैं, प्रत्युपस्थित वो उपस्थित होते हैं, बोले भैया क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं हूं ना, है ना तुझे, अभी तक इतने करते करते झेल रहा, अब एक बार में आग लगा देता हूं, लगाया आग, ऐसे टेम्परेचर बढ़ा देता है वोल्टेज, स्वाहा खत्म, एक तो जलने के लायक ही रह जाएगा शरीर, अंदर से मरवा दिया सारे, सारे सेल खत्म, जल जाएगा सारे। तो इसी की बात को शरीर के अंदर आग लगा करके ताप बढ़ा करके सेल खत्म कर देना, यही श्लोक में यही कहते हैं, किस भय रहता था कब ना हो जाए, कब ना हो जाए, कब ना हो जाए, हो ही गया, नहीं हो ही गया, अब प्रज्वर आकर के ददाह आग लगा ही डाला, आग लगा डाला, तब तो कोई ये थर्मामीटर वगैरह काहे को लगाएंगे, तो थर्मामीटर लेने से पहले बोलेंगे नहीं ये तो गन केस, यही होता ना, डेड बॉडी को चेक करने के लिए फिर लगाते थोड़े हो गन केस है ही नहीं, कुछ क्या चेक करेंगे पता नहीं, कोई प्रभुपाद जी ने लिखते हैं मेडिकल साइंस बोलता है कि ऐसा आप क्या शायद किसी को चेक किए होंगे टेम्परेचर, कि डॉक्टर साहब चेक करते हैं क्या, 107 आप चेक नहीं किए, आप तो उससे पहले पाले पड़े ना उनके पास, अब इस अवस्था के चिकित्सा नहीं किए हैं कम उम्र वाले को किए हैं, अब एक जवन सेना काल कन्या का अटैक नहीं हुआ है, तब अटैक करने से टेम्परेचर बढ़ा हुआ चेक नहीं किए तो इस प्रकार की इस पुरंजन के अंतिम उपाख्यान से इस प्रकार के गंधर्व सेना, जवन सेना, काल कन्या और उनके भाई भी आके पहुंच गया प्रज्वर, ये सभी के साथ जो आक्रमण और किसी को नहीं छोड़ता, सबको होना है, इस आक्रमण से बचने के लिए क्या उपाय है, कोई उपाय है, यहां तो बोलते उपाय भी ही ना, कोई उपाय नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर सकते सचमुच, अब जब हाथ में शहद मिला आपको, कोई शहद जानते ना सब, तो शहद कोई बिल्कुल नेचुरल प्योर नेचुरल शहद कोई आपके हाथ में दिया, अब खाने के लिए बड़ा इच्छा भी है, अब बातचीत करने में लग गए, परिवार की वो मिले, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब आ गए, उनसे बात करते करते हाथ में तो है, चाट लूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है, तो सही बात करते 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 इतने मग्न हो गए, सामने है कभी भी चाट लूंगा, अब चाटे नहीं चाटूंगा करके सोचते सोचते वो तो लिक्विड है वो बहने लगा, धीरे 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 इधर आया, हाँ यही तो है वो चाट, धीरे 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 बात करते करते देखा तो यहां तक आ गया, अरे गिर ना जाए क्योंकि यहां से तो नीचे जाएगा नहीं, यहां अपग्रेड होगा, अब नीचे गिर जाएगा इसलिए जीवा लगेगा नहीं, जब इतने आसान था वहां वहां नहीं किया, अब तो जीवा लगेगा नहीं, आपके सामने देखते देखते ड्रॉप गिर पड़ेगा, अब केवल परेशानी केवल पश्चाताप ही रह जाएगा, मधु आपके सामने ड्रॉप हो जाएगा गिर पड़ेगा, इस अवस्था तक अपेक्षा नहीं करना चाहिए, बहुत पहले एक फर्स्ट नोटिस आने से पहले हमको तैयारी कर लेना चाहिए, चाट लेना चाहिए, इसी को भागवत भी सिखाता है, बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुषगण सिखाते हैं आकर के, श्रीमन भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर बोलते हैं जीव जागो जीव जागो, गौराचंद्र बोले जीव जागो, गौराचंद्र बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। महाप्रभु आकर बोलते हैं कि अरे जगो, हम तो सब जगे हुए हैं, क्लास में बैठे हैं, कोई सोए थोड़ी। अवश्य क्लास में सो जाते हैं, लेकिन अब नौ बजने वाला अब तक नींद खुलेगा, हम थोड़ी सोए हैं। हाँ सो उठ चुके हैं मैडम। बोले नहीं सोया है, कैसे, मैं खुद आंख खोल कर बैठा हूं, चश्मा भी लगा रखा हूं, कैसे बोलते हैं सोया है करके। व्हाट प्रूफ यू हैव, मैं सोया हूं करके आप जगा बोलते हैं। बोले क्योंकि जगने का जो प्रूफ है कि आप जगे हुए करके जो प्रमाण है वो है नहीं। क्या जगने का प्रमाण है, आंख खुला तभी नहीं ना, नहीं। जगने का प्रमाण यही है, जागने के बाद आदमी कुछ काम करता है, जो सोने के समय नहीं करता है, मरा हुआ पड़ा रहता है, जगने के बाद बाकी काम करता है। तो ये जब काम करते हुए जब देखा चलता फिरता उठता गया ये सब करता तो फिर जगा हुआ है, लेकिन तो ऐसा नहीं दिखता। बोले क्यों ऐसा नहीं करता है, जो करना चाहिए कर्म वो नहीं करता है, मतलब तू सोया हुआ है, क्योंकि जगने से तो काम करना पड़ता है, जगते ही काम शुरू होता, तू कुछ काम नहीं कर रहा है इसीलिए तू सोया हुआ है। तो क्या काम करना चाहिए आगे बताएंगे। मैं सोया हूं तो कहां सोया हूं बैठा है। बोले अरे तुझे दिखाई नहीं पड़ता, बढ़िया बेड में सोया है। कहां, कतो निद्रा जाओ, कब तक सोएगा, कहां सोया है, हे माया पिशाची की गोद में। ऐसे कोई खटिया में बेड में गद्दा लगाकर नहीं, एक पिशाची, पिशाची जानते ना किसको कहते हैं, दाइन, जिनको रात में तो डरते ही तो है नाम सुनकर के, दिन में देखने से भाग जाते हैं। ऐसे पिशाची उनको देखे नहीं, देखेंगे आंख तो बंद ही है, देखेंगे कैसे। और उसी के गोद में सोए हुए हैं, पिशाची के गोद में, माया पिशाची रखोले। तो बोलते हैं कि फिर आप जो प्रमाण करते हैं कि मैं सोया हूं, जगने से जो कर्म करना चाहिए करना चाहिए, क्या काम करने से जगा करके मानूंगा, मैं जागृत हूं, अब क्या करने सब जागृत करके मानेंगे। बोलते भजी बबलिया से संसार भीतरे, भजी बबलिया से संसार भीतरे, भूलिया रहिला तुम्हें अविद्यार भरे, भूलिया रहिला तुम्हें अविद्यार भरे। बोले संसार में एक ही प्रोजेक्ट है, नो अदर वर्क, एक ही प्रोजेक्ट लेकर आया था संसार में। कौन सा प्रोजेक्ट है ना, ओनली भजन। भजीवा बोलिया असी संसार भीतरे, इस संसार में विशेष करके मनुष्य शरीरधारी प्राणी एक ही काम लेकर आता है, गर्भ के अंदर कसम खा करके प्रतिज्ञा करके अग्रीमेंट साइन करके निकलता है, यही करूंगा, कान नाक रगड़ करके इसी प्रोजेक्ट लेकर आया, भूल गया, भूल गया जो मुख्य काम के लिए आया था, भजन करने के लिए आया था, भूल गया। उसी के बोलते याद दिलाते हैं, तो ये जब नहीं कर रहा है भजन तो मतलब सोया हुआ है, उठा ही नहीं। जो भुलाने वाली माया है, माया पिशाची के गोद में तो सोया हुआ है, देखता भी नहीं है, सोया हुआ है, भजन करने का जो कार्य नहीं कर रहा है, तो कैसे मैं मानूंगा कि तू जगा हो करके। तो अच्छा, तो फिर कैसे छूटूंगा, जगूंगा कैसे, अब जगा दीजिए। नहीं रे, अब तो ऐसे बोलने से नहीं जगेगा, बोले मैं चिल्लाता हूं नहीं जगेगा, बुलाने पर भी नहीं जगता है। इसी प्रकार से माया ने सुला कर रखा है, भुला दिया है, इसी जगह ने अब तो दवाई लेना पड़ेगा तुझे जगने के लिए। एनी छी औषधि माया नसीबार लागी नीची औषधि माया, नसीबार लागी हरि नाम महामंत्र लय तुमि मागी हरि नाम बोलते मैं दवाई लेकर आया हूं तू ले लो तो हम क्या कम है, बोलते तू जान नहीं पहचान नहीं तेरे से दवाई क्यों लूंगा, पता नहीं तू क्या देगा। हाँ हमारा डॉक्टर जो कार्तिक के मारते हैं वो दवाई देता हम लेते हैं, तेरा क्या सर्टिफाइड है, मंगलाती मानव से नहीं कहेगा तेरा नाम, हम कैसे ले लेंगे। हाँ तो बोलते हैं अरे मैं तो तेरा मित्र हूं, वही और कोई तेरे दुनिया में मित्र नहीं है, मैं ही तेरे लिए आया हूं तेरा ही हूं। क्या आमी बिना बंधु आर, आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हारा। उसका पहले लाइन क्या है, हाँ तुम्हारे लाइते आमी हैनु अवतार, तुम्हारे लाइते आमी हैनु अवतार। बोले केवल आपके लिए तुम आया, आपको ही लेने के लिए मैं उठाने के लिए आया हूं। आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, दुनिया में जितने अभी तक मरते दम तक बंधु बांधव बनाया सब किसके ऊपर टिका हुआ है, आप उनके काम पर 100 रुपया लेकर दिए वो आपके काम पर 100, 101 लाएंगे। यही है बंधुता, अगर आप नहीं लिए उस दिन कट गया बंधुत्व खत्म, इस लेन देन के ऊपर टिका हुआ है। बस एक बार करके देखो बंधु के साथ व्यवहार, ऐसे आप न जाओ उनके काम में कुछ गिफ्ट लाकर न दो फिर देखना वो बोलेंगे हमारा कट गया बंधु, है नहीं, केवल इसी के ऊपर टिका हुआ है। कुछ नहीं, बंधु हमसे कुछ चाहते हैं हम भी उनसे कुछ चाहते हैं, बस यही मित्रता है, वही बंधुता, यही सौहार्द है। लेकिन थोड़ा सोच करे देखो भगवान क्या क्या नहीं दिए हमको, क्या क्या नहीं दिए हैं, लेकिन इतने बड़े दाता हैं, सब कुछ दे करके बोलते मैं क्या दिया, कुछ ही नहीं दिया, थोड़ा सा तो दिया। इसलिए जो बड़े आदमी बहुत करोड़पति आदमी आपके 10 रुपया के ऑटो भर दे दे तो पीछे तरह से दे फेंक दो उसको, दे दो उसको छिप करके देगा। तो भगवान ने हमारी हम जैसे लोगों को सब कुछ देते हुए छिप करके देते हैं, बताते नहीं कि मैं दिया करूं, शर्म लगता है मुझे, बस मैं इतना ही दिया। इसलिए भगवान शर्म फील करते हैं इसलिए छिपा कर देते हैं, विलक्षण दाना दाता है। क्या क्या नहीं दिए अब क्या बताऊं, सब कुछ दिए। इसी रूम में अब लाइट लगाने के लिए देखो 3-4 बड़े बड़े लाइट, तब भी लाइट कम पड़ रहा है, अंधार दिखाई पड़ता है ना, नहीं वो भी वायरिंग करना पड़ा खर्चा करके, फिर इलेक्ट्रिक बिल भरना पड़ता है, 10 बार तो इलेक्ट्रिक चला ही जाता है और कितने करके लाइट वो करके नहीं कर पाते हैं, वो फिर बोलते हैं कि हम ईमानदारी है इतने हम चुकाते हैं करते। भगवान ने केवल हमारे लिए नहीं पूरे ब्रह्मांड में एक बल्ब फिट कर दिए, उसका कोई होल्डर वायरिंग तक कोई देखे ही नहीं अभी तक, एक बल्ब। कभी भी लोड सेटिंग नहीं होता, चाहे कहीं भी दुनिया में चले जाओ बल्ब मेरे ऊपर ही टंगा हुआ, और इतने लाइट थोड़ा आंच बढ़ जाए तो ही बाप रे बाप कम करो वॉल्यूम, ऐसी लगाना पड़ता है एक बल्ब, है ना। नहीं जदा आदित्य गतम तेजम जगत भाष्यत अखिलम, जब चंद्रमसी बोले गर्मी ठंडा भी वही दे रहा हूं चंद्रमा के ताप, जब चंद्रमसी जच अग्नो, अरे आग के अंदर जो पका कर खाना फिस्ट खाते हैं डेली, वो आग के अंदर दाहिका शक्ति कौन दिया, उन प्रभु ने दिए पका कर खाने के लिए। जद आदित्यगत तेजम जद चंद्रमसी जच अग्नो तत तेजो विधि माम एकम, केवल मैं छाती ठोक करके एक आदमी बोलता है, कोई दुनिया में है ऐसे बात बोल सकता है, ओनली वन पर्सन कृष्ण है बोलते मैं ही नहीं दिया, मैंने दिया। अरे तू खाना खाने के बाद भी पचा भी नहीं सकता, उसको ही मेरे हेल्प चाहिए। अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानं समायुक्तं पचामि अन्न चतुर्विधम्, हरेक शरीर के अंदर वैश्वानर अग्नि करके मैं ही घुस कर बैठा हूं। क्या क्या नहीं दिए भगवान ने, सब कुछ देने के बाद भी हम कभी सोचे कि भगवान ने दिए करके? अगर हम रास्ता में कोई तकलीफ पड़े, कोई आपको 10-20 रुपया दे दिया तो बोलते कितने एहसान मानेंगे, ध्यान क्यों देंगे, जब देखेंगे वो यू हेल्प मी, सो थैंक यू। 20 रुपया कोई कीमत है? और ये क्या नहीं दिए जन्म से, सब कुछ दिए, अब देते ही रहते हैं लेकिन इतने छिपे करके देते हैं पता ही नहीं चलता है। जैसे देने समय छिप कर देते हैं, लेने समय इसे छिप कर ले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इसे चला गया। जो आया था संपत्ति लेने भी, क्योंकि देने लेने वही काम करते, मतलब छिप कर दिया, छिप कर ले लूंगा, ऐसे ले लेते हैं। देखते देखते नेत्र ज्योतिहीन हो गया, दांत निकल गया, बाल पक गया, शरीर बैंड हो गया, देखते देखते पता ही ना चला, क्योंकि दाता ऐसे हैं, लेने वाले भी ऐसे ही हैं, वो ले लेते हैं। तो सचमुच लेन देन का प्रबंधित्व करता है, सबसे बड़ा देने वाला तो वही है, सबसे बड़ा लेने वाले भी वही है, तो बंधु वही है। और आपके लिए ही, आपको लेने के लिए आया, क्यों मर रहा है अभी, अब भोग ही नहीं सकता, नहीं मैं थोड़ा भोगना चाहता हूं, भोग करने के लिए तेरा साधन ही खराब हो गया। जिस तरह साधन जिसके द्वारा भोग करता है शरीर, वो भी नालायक हो गया, चलेगा नहीं गाड़ी, यंत्र ही खराब हो गया, तो कैसे भोगेगा? तो तुझे नया शरीर दूंगा भोगने के लिए, भगवान इसके लिए ले जा रहे हैं कि आप भोगना चाहते हो ना, तो बढ़िया सा गाड़ी देता हूं, चलो ये 40 मॉडल का गाड़ी, 40 ना कितने, 50-60 मॉडल का गाड़ी, 60 साल का जो गाड़ी है, वो गाड़ी में क्या चलता, वो नया ब्रांड न्यू कार देता हूं, चलो। भगवान नया देने के लिए ही ले जाते हैं, इसीलिए मित्र है, लेते हैं, इसे नहीं ले जाकर के देते, नहीं नहीं बढ़िया देने के देते। तो इसी को बोलते हैं, तुम्हारे लहित हम हिन्नु अवतार, आमी बिना बंधु आ रखे अच्छे तुम्हार, ये इसे क्यों नहीं समझते, मैं ही तेरा बंधु और कोई तेरा बंधु नहीं है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अभी भी उसके ऊपर सोच विचार करके इस दीन और अकिंचन, वृद्ध अवस्था में दीनहीन हो जाता है आदमी, अकिंचन मतलब कोई उसका रहता नहीं हेल्प करने के लिए, बिल्कुल हताश हो जाता है, तब तो फिर पूरे बायोडाटा फाइल लेकर के आता है ठाकुर जी के सामने, मुझे अभी नए भक्त में एडमिट कर दो, मैं भक्ति करना चाहता हूं। हाँ, अब घर वाले कोई नहीं पूछते, मंदिर में है वहां खाऊंगा, खट में सोकर मठ में सोकर खट में सोकर मठ में खाऊंगा, तो इसलिए आ जाते हैं ज्वाइन करने के लिए। भगवान को धोखा देने में भगवान कुछ बोलते नहीं ना, खड़े रहते हैं, तो उनको चिटिंग सरासर कर सकते हैं, बाकी किसी को धोखा देने से गाली गुलज करते हैं, पकड़ते हैं, भगवान बेचारे कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खड़े, तो उनको धोखा दे सकते हैं, है ना नहीं? हम पहनने के लिए, वो करने के लिए बढ़िया सा वस्त्र खरीदेंगे, सब खरीदेंगे, भगवान की बोले सत्यनारायण पूजा करना है तो पंडित जी ने लिखा है, उनके लिए भी एक है, तो वस्त्र खरीदने दुकान में जाएंगे, वो देगा बोला भगवान के लिए चाहिए सत्यनारायण पूजा के लिए, बोले बढ़िया वस्त्र, बोले पागल कहीं के, कितना दिन से व्यापार करता है, अरे भगवान के लिए चाहिए, भगवान के लिए वस्त्र, आपके बेटा बेटी के आपके लिए इतना कपड़ा कीमती लिया ना भगवान के, नहीं 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 नहीं, तुझे पता ना भगवान के वस्त्र 8.5 रुपया मीटर वाला होता है मार्किन क्लब, उसको लेकर जाएंगे, उसको लेकर जाएंगे, और लेकर भी जब पूजा के समय होगा कहां, क्योंकि थर्ड क्लास उनको भूल जाते, अरे पत्नी को बोलते कहां गया वो ठाकुर जी वस्त्र, अरे कहां भूल गया, पता नहीं कहां फेंक दी, ढूंढते ढूंढते मिल गया भी नहीं, वो पंडित जी बैठे रहेंगे, बोले वस्त्र नहीं मिलता, लाया तो था पता नहीं कहां, सुपारी के साथ लाया था, कहीं गिर गया पता नहीं, बोले चलो कोई बात नहीं, 10 रुपया रखो, अभी कराता हूं वस्त्र भगवान को पहना, तो भगवान का आवाहन कर चुके हैं, आवाहन करने का वस्त्र नहीं है तो पंडित जी बोलेंगे फूल लेकर के, वस्त्राभावे सूत्रंग दद्यात, वस्त्र नहीं है कि धागा देता हूं काम चलाओ, जो पंडित जी हो गए पूछो उनके ऐसे करते हैं, अब क्या करें, 10 रुपया पकेट में डाले, बोले धागा एक पकड़ा दिए भगवान, धागा में काम चलाओ, यही वस्त्र है। अगर आप लोग अभी गए ब्रह्मांड घाट गोकुल में स्नान गमछा भूल गए, बोले धागा देता हूं काम चला लो, चलेगा नहीं? भगवान को आपको कपड़ा नहीं, धागा में चला लो गाड़ी, क्या करें, किसको धोखा देते हैं हमने? ये शिरोमणि है, सबसे सरदार है वो, उनके साथ चिटिंग क्या नहीं जा सकता, वो चिटिंग केवल हमारा साथ हम करते हैं। तो इसलिए अभी भी सतर्क हो जाना चाहिए इस काल कन्या की अटैक और इस चंडवेग और जवन सेना और उसके ऊपर आग लगाने वाली प्रज्वर आकर पहुंचने पहले कुछ व्यवस्था कर लीजिए, वो तो लगेगा ही, उसमें बच नहीं सकते। बचने से पहले अगर कुछ करना है, अभी तो वो तो नोटिस भेज रहा है भागवत, उसके पहले भगवान ने नोटिस भेजते हैं, अब भी तैयार हो जाओ, जग जाओ, जग जाओ। जगने का मतलब है बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उसको मांग करके अहो रात्र अहर निशी, इसी के चिंतन करो, मनन करो, गायन करो, भजन करो, बस इसी से कुछ कले मिलेगा, कुछ नहीं। हरे कृष्ण।